नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 15 जनवरी 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक दुखद पड़ाव। दुनिया भर में मृतकों का आंकड़ा 20 लाख के पार हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचने और सभी के लिए टीके सुनिश्चित किए जाने की पुकार लगाई। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन के वुहान शहर पहुंची। कोविड-19 के दौरान घरों से काम करने के रुझान में बढ़ोतरी, लेकिन कर्मचारियों को श्रम कानूनों के दायरे में लाने और संरक्षण उपलब्ध कराने की है दरकार। और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों में तेजी जरूरी, नहीं तो झेलने होंगे गंभीर दुष्परिणाम। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दुनिया एक दुखद पड़ाव पर पहुंच गई है। शुक्रवार को कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा 9,14,00,000 से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा है कि जिंदगियों की रक्षा करने और महामारी का अंत करने के लिए देशों को एक साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।
In the memory of those 2 million souls, the world must act with far greater solidarity. Now,
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि उन 20 लाख आत्माओं की स्मृति में दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा एकजुटता से कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने चिंता जताई है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए असरदार और सुरक्षित टीकों का लगना तो शुरू हुआ है, लेकिन देशों में असमानताएं देखने को मिल रही हैं।
Vaccines are reaching high-income countries quickly, while the world's poorest have none at all. Science is succeeding, but solidarity is failing.
धनी देशों में वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है, जबकि निर्धन देशों के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए महासचिव गुटेरेश ने सरकारों का आह्वान किया है कि अपने जन समूहों की रक्षा का दायित्व निभाते समय वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचा जाए, अन्यथा महामारी से उबरने के प्रयासों में और देरी होगी। इस बीच दुनिया भर में कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम गुरुवार को चीन के वुहान शहर पहुंच गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने कोविड-19 पर आपात समिति के ताजा सत्र के दौरान इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। यात्रा शुरू किए जाने से पहले टीम के सभी सदस्यों के PCR और एंटीबॉडीज टेस्ट कराए गए हैं। वुहान पहुंचने वाले सदस्य अगले 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेंगे और चीन में अपने समकक्षों के साथ दूर रहकर काम करेंगे, लेकिन क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद टीम के सदस्य जमीनी स्तर पर 2 और हफ्तों तक अपने कामकाज को जारी रखेंगे। उधर भारत, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में महामारी की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान की तैयारियां चल रही हैं। इंडोनेशिया में टीकाकरण बुधवार को शुरू हो गया, जबकि भारत में शनिवार 16 जनवरी से शुरू होने वाले अभियान की तैयारियां हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य देशों में आगामी दिनों में वैक्सीन दिए जाने की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में स्थित देशों में पोलियो उन्मूलन अभियान में सफलता मिली थी और उस मुहिम के अनुभवों और सबक का इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि शुरुआत में वैक्सीन की आपूर्ति और टीकों की संख्या सीमित है, इसलिए महज सीमित संख्या में दिए जाने भर से चुनौती को हल नहीं किया जा सकेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती उपायों का आने वाले हफ्तों और महीनों में भी पालन करने के लिए कहा गया है, जैसे कि मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित करना, छींकते या खांसते समय मुंह ढकना और शारीरिक दूरी को बरता जाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की इस हफ्ते एक नई रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान घर से कामकाज के बढ़ते रुझान का विश्लेषण किया गया है। कोरोना वायरस संकट के कारण एहतियाती कदमों के मद्देनजर घर से काम करने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और ये रुझान आने वाले समय में भी जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन ऐसे बहुत से कामगार श्रम संबंधी कानूनों के दायरे से बाहर होते हैं, इसलिए रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि ऐसे करोड़ों कर्मचारियों और कामगारों की बेहतर ढंग से शिनाख्त की जानी चाहिए, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए और संरक्षण प्रदान करने के उपायों पर जोर दिया जाना होगा। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन श्रम एजेंसी के मुताबिक कोविड 19 से पहले विश्व भर में घर से काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 26 करोड़ थी, जो कि वैश्विक कार्यबल का लगभग 8% हिस्सा था। लेकिन महामारी फैलने के शुरुआती महीनों में हर 5 में से एक कर्मचारी को घर से काम करना पड़ रहा था। वर्ष 2020 के आंकड़े पूरी तरह उपलब्ध होने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में इस संख्या में ठोस बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। कोविड 19 के फैलाव से बचाव के लिए अनेक देशों में आवाजाही पर सख्त पाबंदियां और तालाबंदी लागू होने के बाद घरों से काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को जारी रिपोर्ट दर्शाती है कि घर में होने वाला कामकाज अक्सर बाहरी दुनिया की नजरों से ओझल होता है। बहुत से अदृश्य कामगारों को खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर जोखिम मंडराता है और प्रशिक्षण तक पहुंच न होने के कारण भविष्य में उनके लिए अवसरों पर असर हो सकता है। घर से बाहर कार्यरत अपने समकक्षों की तुलना में उनकी आमदनी कम होने की संभावना ज्यादा होती है, उच्च कौशल वाले पेशों में भी। घर से काम कर रहे लोगों की आमदनी औसतन ब्रिटेन में 13%, अमेरिका में 22%, दक्षिण अफ्रीका में 25% और अर्जेंटीना, भारत व मैक्सिको में 50% तक कम होती है। रिपोर्ट के मुताबिक घर बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान सामाजिक संरक्षा का स्तर हासिल नहीं है। साथ ही उनके किसी श्रम कल्याण संगठन यानी ट्रेड यूनियन का हिस्सा होने या समझौतों से होने वाले फायदों का लाभ मिलने की संभावना भी कम होती है। ILO का अनुमान है कि घर से काम करने का रुझान आने वाले समय में भी जारी रहेगा और आगामी वर्षों में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर घरों से काम करने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स के समक्ष मौजूद चुनौतियों से तत्काल निपटे जाने की जरूरत है।
कोरोना वायरस संकट के कारण अनेक देशों में एहतियाती उपायों के तौर पर स्कूलों को बंद किया गया है, जिससे करोड़ों बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भारी असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने फिर दोहराया है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने एक बयान जारी कर कहा कि स्कूलों में तालाबंदी से बच्चों पर होने वाले प्रभाव स्पष्ट हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि वैश्विक महामारी स्कूलों से नहीं फैल रही है, इसके बावजूद बहुत से देशों ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है और कुछ देशों में तो अब एक साल होने जा रहा है। यूनिसेफ प्रमुख ने आगाह किया है कि स्कूलों को बंद किए जाने की विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी है और पिछले वर्ष कोविड 19 व्यवधान के कारण दुनिया भर में 90% से ज्यादा छात्र प्रभावित थे। एक तिहाई से ज्यादा स्कूली बच्चों के पास घर बैठकर पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा या माध्यमों तक पहुंच नहीं थी। स्कूलों के दायरे से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 2,40,00,000 होने की संभावना है। इस स्तर को वर्षों से नहीं देखा गया है। बच्चों के पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित करने की क्षमता प्रभावित हुई है और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्थाओं में फलने फूलने के लिए जरूरी कौशल कमजोर हुए हैं। यूएन एजेंसी के मुताबिक बच्चों को घर तक सीमित रखने से उनके स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और कल्याण पर जोखिम बढ़ता है। सबसे ज्यादा निर्बल बच्चों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मिलने वाले भोजन के बगैर बच्चे भूखे हैं, उनमें कुपोषण बढ़ रहा है। अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और खेलकूद ना हो पाने की वजह से उनकी शारीरिक फिटनेस भी प्रभावित हुई है और मानसिक दबाव के संकेत भी दिखने लगे हैं। स्कूलों में मिलने वाली सुरक्षा के एहसास से वंचित छात्रों के सामने अब शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल विवाह और बाल श्रम जैसे जोखिम भी बढ़ गए हैं। इसके मद्देनजर स्कूलों में तालाबंदी को एक अंतिम उपाय के तौर पर ही इस्तेमाल में लाए जाने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के तहत अनुकूलन या अडेप्टेशन प्रयासों में प्रगति हुई है, इसके बावजूद बाढ़, सूखा और बढ़ता समुद्री जल स्तर जैसी अन्य चुनौतियों से असरदार ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है। यूएन एजेंसी ने गुरुवार को अडेप्टेशन गैप नामक एक रिपोर्ट को जारी कर सचेत किया है कि पुख्ता जलवायु कार्रवाई के बगैर दुनिया को गंभीर मानवीय और आर्थिक क्षति झेलनी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि तापमान में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में जैसे जैसे तेजी आ रही है, देशों को भी नई जलवायु वास्तविकताओं से निपटने के लिए आवश्यक बदलाव लाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर दुनिया को इसकी गंभीर कीमत चुकानी होगी। यूएन एजेंसी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा है कि कठिन सच्चाई यह है कि जलवायु परिवर्तन अब हमारे सामने है। इसके प्रभाव ज्यादा पैने होंगे और निर्बल देशों व समुदायों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। विकासशील देशों में अनुकूलन प्रयासों की वार्षिक कीमत 70 अरब डॉलर आंकी गई है, लेकिन वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 300 अरब डॉलर और 2050 में यह 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट दर्शाती है कि 3/4 से ज्यादा देशों के पास कुछ हद तक अनुकूलन संबंधी योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय इंतजाम नहीं है। इसके मद्देनजर सार्वजनिक व निजी स्तर पर वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करने की तत्काल आवश्यकता है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने महासचिव गुटेरेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक जलवायु वित्तीय संसाधनों का 50% अगले वर्ष अनुकूलन प्रयासों में आवंटित करने के लिए एक वैश्विक संकल्प जरूरी है। इंगर एंडरसन ने उम्मीद जताई है कि इस उपाय से अनुकूल प्रयासों में तेजी आएगी। समय पूर्व चेतावनी प्रणाली से लेकर सुदृढ़ जल संसाधनों व प्रकृति आधारित समाधानों तक।
पिछले 2 दशकों में आतंकवाद से मुकाबले में वैश्विक सहयोग की समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस हफ्ते एक मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अनेक उपायों को पेश किया गया था। इस सिलसिले में प्रगति की निगरानी के लिए एक आतंकवाद निरोधक समिति को भी स्थापित किया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हाल के सालों में विशेष तौर पर कोविड-19 के दौरान आतंकवाद की चुनौती में किस तरह बदलाव आया है। कहा गया है कि आतंकवाद निरोधक प्रयासों में जरा भी ढिलाई बरते जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की अहमियत पर भी बल दिया गया है। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
आतंकवाद निरोधक मामलों के प्रमुख व्लादिमीर वोरोनकोफ ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी गतिविधियां दर्शाती हैं कि सभी को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, खतरा वास्तविक है और अनेक देशों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर है। उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा कि कोविड-19 महामारी ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित किया है। आतंकवादी गुट मौजूदा संकटों का फायदा नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और संगठित आपराधिक गुटों से संबंधों को बढ़ावा देने में करते हैं। आतंकवादियों ने कोविड-19 के कारण आए व्यवधान का फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने महामारी के कारण ध्रुवीकरण और नफरत भरी भाषा व सामग्री में आए उभार पर सवार होते हुए विकास और मानवाधिकार एजेंडा में नाकामी का लाभ उठाना चाहा है। व्लादिमीर वोरोनकोफ ने कहा कि कम खर्चीले कम तकनीक के साथ अकेले हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी तत्व आसान लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं और इस खतरे की रोकथाम करना अब और भी कठिन हो गया है। पिछले 20 वर्षों में आतंकवाद से मुकाबला करने में वैश्विक सहयोग की समीक्षा के लिए सुरक्षा परिषद ने मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन किया है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों द्वारा सर्वमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव 1373 में आतंकवादी कृतियों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराए जाने को अपराध घोषित करना, सदस्य देशों द्वारा आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिए जाने के अलावा अन्य उपायों पर जोर दिया गया था। सुरक्षा परिषद ने इस संबंध में प्रगति की निगरानी के लिए एक आतंकवाद निरोधक समिति भी स्थापित की थी। इस समिति को सहायता प्रदान करने वाले एक विशेष राजनीतिक मिशन CTED की कार्यकारी निदेशक मिशेल कॉनिक्स ने बताया कि पिछले सालों में आतंकवाद के खतरों में किस तरह का बदलाव आया है।
और चलते चलते आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने हाल ही में पुष्टि की है कि यूएन प्रमुख के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वो अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। महासचिव के पद पर अगला 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2022 में शुरू होना है। इस खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है news.un.org/HI। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।